नमस्ते। भारतवर्ष में एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेडिशन है, वो है कि जो अवतार हैं या जो सीयर्स हैं, सेजेस हैं, उनके जीवन के बारे में एक बड़े सुंदर ढंग से विस्तार में बताया जाता है, खासकर अवतारों के जीवन के बारे में। तो ये एक बड़ी यूनिक चीज़ है। सनातन धर्म में बहुत सारी यूनिक चीज़ें हैं, उनमें से एक चीज़ ये है। और मैं इसलिए ये कह रहा हूँ बड़े जिम्मेदारी के साथ, अब क्राइस्ट के जीवन की कुछ घटनाएं हैं जो इधर उधर से आपको देखने को मिलेंगी, सिंबॉलिकली वो दी गई हैं। और इस्लाम में तो मोहम्मद जी ने कहा था कि मेरे जीवन के बारे में या किसी जीवन के बारे में कुछ कहना नहीं है। वो कहने योग्य था कि नहीं, वो एक अलग बात है ऑल टुगेदर, किंतु ठीक है, एक बस केवल एक पथ दिया गया, एक पुस्तक है और उस पुस्तक में आपको डूज एंड डोंट्स दिए गए हैं। आप अगर बाइबल उठा लें या कुरान उठा लें या जुडाइज्म की किताब है तालमुड उठा लें, ये पथ दिए गए हैं, ये आपके जीवन के डूज एंड डोंट्स एंड देयर इज ए पाथ। पर अब समस्या ये होती है कि ये तो ठीक है लेकिन वो लिविंग नहीं रहता है। लिविंग क्यों नहीं रहता है कि अगर मैं ये कहूँ ऐसा करना है वैसा करना है या कोई भी आके कह दे तो आप उसको, हम नॉट तो कर देते हैं, लेकिन योग रियल टाइम में होता है। जब ये कह दिया जाता है कि आप माउंट एवरेस्ट चढ़ेंगे, वो जीपीएस मैप होता है ना, तो उसमें गूगल मैप कि आपको यहाँ से वहाँ जाने का मिल जाता है ना, शॉर्टेस्ट रोड या वट एवर बेस्ट रोड और डिफरेंट रूट्स, उसमें क्या नहीं मिलता है कि मार्ग में बड़ी सारी अप्रत्याशित चीज़ें होती हैं। योगा टेक्स प्लेस इन रियल टाइम और उन वो चैलेंजेस आवश्यक होते हैं। आप कोई लिख दिया गया, आप मैप देखोगे तो यहाँ से आपको कंचनजंगा जाना है, ऐसे जाना, रास्ता तो लिख दिया, ब्लिजर्ड्स, एवलैंके, स्नो स्टॉर्म्स, फॉलिंग इनसाइड द डिच, स्नो लेपर्ड्स, शेरपा कमिंग टू हेल्प यू, हैविंग ए विजन ऑफ यति, गॉड नोज, हाइपोक्सिया। अब ये जो है उसमें, अब योगा इज इन रियल टाइम, तो जब हम लेकिन किसी को देखते हैं कि वो इस पथ से गया है और उसका जीवन, उसने कैसे इन चैलेंजेस को लिया, ये मेरी एक हमेशा समस्या रही है संतों की जीवनी के बारे में, कि हम लोग बड़ा एक बड़ी सुंदर सुंदर चीजें बाहर की एक लिख करके दे देते हैं और ऐसा लगता है कि इनके जीवन में तो कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। इनके घर में क्या इनका झगड़ा होता था, क्या इनको भी समस्या होती थी अपने माता पिता, हस्बैंड वाइफ, बच्चों के साथ, दे हैव ऑल लिव्ड लाइक दैट। नो, मेनी सेंट्स वेयर मैरिड एंड हैड चिल्ड्रन, वी हैव नो क्लू अबाउट देयर लाइफ मोस्ट ऑफ द टाइम। और यदि वो शादीशुदा नहीं थे, अब जीसस क्राइस्ट हैं, उनको कैसा लगता, महसूस कैसा होता था, मेरी मैग्डलिन उनके साथ थी। तो ये सारी, बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो हमेशा जब हम योग पे चलते हैं तो एक भाव आ जाता है कि इनके लिए तो ये आसान था। शेरविन से ये प्रश्न करते थे लोग, आपके लिए क्या कठिन था, आपके लिए तो सब आसान था। तो शेरविन कहते हैं यदि ऐसा है तो मेरे जीवन का महत्व ही नहीं है कोई। यदि मैं शुरू से ही भगवान और सब मेरे लिए आसान था तो मैं किसी को क्या उदाहरण प्रस्तुत कर सकता हूं। तब जब उनके जीवन में हम देखते हैं कि उनकी कैसी कठिनाइयां हैं, देखिए पहली बार हम देखते हैं इवन एक अवतार उनकी वाइफ का जो संवाद होता है, ये बड़ी यूनिक चीज है, रामायण में कहीं कहीं मिलती है, पर जैसे श्री कृष्ण की एक प्रयास किया था कि मुंशी जी ने लिखने की, बड़ी अच्छी सेवन, वो तो ब्लेस थे, श्री अरविंद ने उनको ब्लेसिंग दी थी टू राइट, ही रोट 7 volumes ऑफ कृष्ण अवतार। उसमें एक श्री कृष्ण का एक ह्यूमन एस्पेक्ट कि उनके घर में क्या समस्याएं होती थी, नॉट दैट दे आर एवरीथिंग, पर अब श्री अरविंद जब उनको आना है, उनको इंडिया में एक और मोस्ट डेंजरस पर्सन कहा जा रहा है, दूसरी ओर उनको कांग्रेस में आके ज्वाइन करके उनको प्रेसिडेंट बनाने की बात हो रही है, दोनों चीजें हो रही थी। जॉन बैप्टिस्टा का लेटर है कि हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आप आ जाइए, रविन्द्रनाथ टैगोर की पोयम है, वहीं ब्रिटिशर्स ने उनको कह दिया है कि ही इज डिक्लेयर्ड एज द मोस्ट डेंजरस मैन इन इंडिया, वहीं ऐसे लोग हैं जो उनको ऑलरेडी संत और अवतार मान रहे हैं। इस बीच में मृलानी जी के पत्र आते हैं, कि क्या तुम मुझे भूल गए हो, पैसे देना भेजना भूल गए और मेरे इसकी मृत्यु हो गई है। और तब श्री अरविंद के करुणा से भरे हुए पत्र कि तुम बहुत भोली हो, ये अवतार ही ऐसे बता सकते हैं। और जाहिर है उनको परेशानी, कहते हैं दोष तुम्हारा नहीं है। मुझे तो ये एकदम रामायण जैसी लाइंस लगती हैं श्री अरविंद की। कहते दोष तुम्हारा नहीं है, तुम बहुत भोली हो, बहुत जल्दी लोगों के कहे में आ जाती हो, इसलिए तुमने ऐसी धारणा बना ली है। मतलब इट इज सो अमेजिंग विद इज इनफिनिट कंपैशन। एक जगह ये नहीं कहते तुम मुझसे बहस कर रही हो, जानती नहीं हो मैं कौन हूं, कैम्ब्रिज में पढ़ा हूं, आईएएस, तुम क्या पढ़ाई लिखाई की है तुमने। लेकिन जैसे वो कहते हैं, कहते किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, तुमसे केवल एक ही मांग है कि तुम बस खुल जाओ भगवान की ओर। और इवन वो अपना उदाहरण देते हैं, इवन इफ यू ओपन टुवर्ड्स मी एज माई शक्ति, तो बाकी सब भगवान देख लेंगे, वही कर देंगे, और कुछ तुमसे मांगनी की जा रही है। तो एक अवतार का जीवन, उसमें जब हम देखते हैं तो पहली चीज होती है एक उदाहरण। इसलिए भारतवर्ष में ये ट्रेडिशन बड़ा लिविंग ट्रेडिशन है, जिसमें उदाहरण दिया जाता है उनकी जीवनी के माध्यम से। दूसरा, हर अवतार एक नई चीज लाते हैं, संभावना। तो जो उनके जीवन में संभव है वो हम सबके जीवन में संभव हो सकता है। ये भी लोग श्री अरविंद से पूछते थे, आप तो सुपर माइंड और ये वो, अब हम लोग के जीवन में कहते हैं इसीलिए मैं कर रहा हूं, यदि मैं कर सकता हूं, मैं भी उसी हार्ड मास मिट्टी का बना हूं, तो तुम्हारे लिए भी ये संभव है। और तीसरा, जो सत्य वो प्रकट करते हैं, उनके जीवन में जो सत्य प्रकट होते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हम सबके साथ कनेक्टेड हैं। क्यों? क्योंकि माता जी से जब किसी ने अवतार और चैत्य सत्ता के बारे में पूछा तो माता जी कहती हैं, श्री अरविंद का भी पत्र है इस तरह का, कहते हैं जो चैत्य सत्ता एक व्यक्ति के लिए करती है वही चीज अवतार पूरी सृष्टि के लिए करते हैं। सो चैत्य सत्ता क्या है? इट इज द डिवाइन एलिमेंट इन अस। तो जब हम अवतार का जीवन पढ़ते हैं तो अब हमारे अंदर भी मिनिएचर रावण राम का युद्ध होता है। ऑफ कोर्स रावण हमारे अंदर दशानन नहीं होता है, राहु केतु को बांधे हुए नहीं है, लेकिन होते हैं ना छोटा सा मिनी रावण। यहां तक माँ बताती हैं कि जो हम लोग अक्सर कहते हैं ना ये इनटॉलरेंट है वो इनटॉलरेंट है, माँ कहती है अपने अंदर की इनटॉलरेंस देख लो और उसको हटा दो, उतना काफी है, बाकी सबकी बाद में। और शायद तुम अगर हटा दोगे परहैप्स तुम कम देखोगे, है लेकिन तुम्हारे पास वो दिया गया है। तो वो कॉस्मिक लेवल पर जो अब श्री अरविंद ने हिटलर स्टालिन मुसोलिनी कॉस्मिक लेवल पे इन पे जो काम किया, हम सबके अंदर छोटा छोटा हिटलर बैठा है, हम सबके अंदर एक तालिबानी बैठा हुआ है, तो उसको तुम अपने अंदर, सो वही चीज जो कॉस्मिक स्केल पर हो रही है वही एक इंडिविजुअल के स्केल पर हो रही है। तो जब हम उनके जीवन को पढ़ते हैं तो उससे हमें इसका बहुत सुंदर एक उदाहरण के रूप में मिलता है। तो आज हम ये पंक्तियां पढ़ेंगे, सावित्री बुक 4 कैंटो 1, द बर्थ एंड चाइल्डहुड ऑफ द फ्लेम। देखिए ये बाल लीला वर्णन क्यों की जा रही, इसीलिए हम लोग ये भारतवर्ष में है, ये बाल कांड, भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महितारी। अब हर्षित क्यों हो रही है मही पृथ्वी, उसको क्या पता चला है? क्योंकि मैटर को यह पता चल गया है, अब इनके ही स्पर्श से अहिल्या वापस अपने देव रूप में लौट सकती है। हर्षित महितारी मुनि मनधारी। अब उसमें जगह जगह पर आता है, श्री कृष्ण की लीला में भी यह वर्णन आता है कि जब वो आते हैं तो यमुना स्पर्श करना चाह रही है और वो डूबते जा रहे हैं। बड़ी सुंदर कहानी है कि वो प्रिजन खुल जाता है, सब बेसुध हो जाते हैं और जब जा रहे हैं तो यमुना बढ़ती चली जाती है। तो बेचारे वसुदेव को प्रॉब्लम हो रही है कि अब तो डूब जाएंगे, तो श्री कृष्ण के पांव को जब स्पर्श करती है तो धीरे 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 शांत हो जाती है। अब ये क्या कहानी है? प्रकृति के अंदर एक आंदोलन आता है जब चैत्य सत्ता का मोमेंट होता है, माता जी बताती हैं हर किस जो मार्ग्ड है योग के लिए उनके जीवन में कभी ना कभी ये अवसर आता है, और पूरी प्रकृति वो उस मोमेंट को लेना चाहती है, और ऐसा लगता है कि आप डूबने वाले हो, लेकिन फिर चैत्य का जो स्पर्श मिलता है वो धीरे 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 टपेट्स। ऑफकोर्स कॉस्मिक लेवल पर भी ये है, अपहीवल्स के समय में श्री अरविंद के जीवन को अगर हम देखें कितने अपहीवल्स माँ श्री अरविंद के जीवन, एकदम 1950 या 60 के बाद में एकदम संसार बदल गया है। वी कैन सी दैट वेरी क्लियरली, अगर उसके पहले का कई चीजों में कई वो, लेकिन एक अलग विषय है। तो यहां पर वर्णन है श्री माँ के जन्म का, और ये वास्तव में हम सब के एक मिनिएचर रूप में अप्लाई करता है। इन दिस हाई सिग्नल मोमेंट ऑफ द गॉड्स, अब उनकी पत्री कौन बना रहे हैं, गॉड्स, देयर इज अ टाइम व्हेन दिस बर्थ मस्ट टेक प्लेस। सो वो चार्ट जो बनती है, नेटल चार्ट, बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। Answering Earth's yearning and her cry for bliss, a greatness from our other countries came. ये माता जी के जन्म का वर्णन है कि दूसरे लोक से वो यहाँ पे जन्म लेती हैं, देह धारण करती हैं। अब जो जो वर्ड्स यूज किए हैं, ए साइलेंस इन द नॉइज ऑफ अर्थली थिंग्स, एक्चुअली चैत्य सत्ता का ये एक बड़ा सुंदर, अब यही सेम चीज, अब डिवाइन आते हैं तो एक अचानक एक स्तब्धता, और चैत्य सत्ता के कॉन्टैक्ट का ये बहुत कंक्रीट लक्षण होता है। सडनली आप एक अपरिचित कहो या चिर परिचित शांति से भर जाते हो, एक ऐसी शांति जो सारा जो नॉइज हो रहा है आसपास अचानक वो समाप्त हो जाती है कुछ क्षणों के लिए, अनफॉर्चुनेटली। पर डिवाइन तो उस शांति को परमानेंटली, नीरवता परमानेंटली स्थापित करने आते हैं, होता है ना। फिर इसीलिए नॉइज जब होती है तो कभी कभी मन करता है ना, अरे कुछ देर के लिए थोड़ा शांति ढूंढे, चलो पांडिचेरी चलें, अच्छा है एक दिन को भी आ जाओ, वो शांति नरिश करती है। इसलिए वो चैत्य सत्ता का जो जो नॉइज जिसमें हम जीते हैं, जिस वातावरण में महसूस किया जा सकता है, तो उसमें साइलेंस इम्यूटेबली रिवील द सीक्रेट वर्ड, ए माइटियर इनफ्लक्स फिल्ड द ऑब्लिवियस क्ले। अचानक जड़ तत्व के अंदर जो स्पर्श मिलता है दिव्यता का, उससे उसके अंदर एक नई स्फूर्णा जागती है। ए लैम्प वॉज लिट, ए सेक्रेट इमेज मेड, ये मंदिर है जो हम सबको बनाना है। अब देखिए कैसे बुल्ले शाह ने बड़ी सुंदर बात कही, बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो, बुल्ले शाह ये कहता, पर प्यार भरा दिल कभी ना तोड़ो। अब कितनी सुंदर की हृदय के अंदर भगवान का निवास है, इसीलिए हृदय में प्रेम, जो शुद्ध प्रेम की जो धारा है हृदय के अंदर, अट्रैक्शंस तो बाहर के होते हैं। तो कहते हैं ये सब तोड़ दो लेकिन इस मंदिर को संभाल के रखो। लेकिन अब देखिए उस सुंदर सूफी सॉन्ग को भी सिनेमा में क्या बना दिया, पर वो एक अलग चीज है। मुख्य चीज है मंदिर यहाँ है, सेक्रेड इमेज, यही एक स्थान है जो सेक्रेड है। यहाँ कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, मंदिर के कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं ना, बाकी आप दुनिया में जो भी कर रहे हो इसको कभी झूठ मत बोलो। दिस इज वेयर द डिवाइन प्रेजेंस इज, स्वयं से कभी झूठ नहीं कहना चाहिए। स्वयं कहाँ है, यहाँ पर है। ए लैम्प वॉज लिट, ये अंदर में ज्योति है, यहां ज्योति है अभिप्सा की, और उसके अंदर एक मूरत है भगवान की, असल मूरत यही है। ये असली गुरुद्वारा है, इसको ढूंढोगे तो ये सब छूट जाएगा कि कौन प्रबंधक है, कौन तख्त का जत्थेदार है, कौन अपहोल्डर है, दिस इज नो मीनिंग। जो आजकल हम देखते ना हो रहा है, एंड रियली वर्ड्स में सिग्निफिकेंस है, खालसा खालिश प्योर, कौन है प्योर, जिसने चैत्य से अपना संपर्क कर लिया है वही प्योरिटी। प्योर प्योरिटी इज नॉट मॉरली एथिकली, ये तो ह्यूमन बींग्स ने उसका इमिटेशन किया है, जो जरूरी है एक ह्यूमन लेवल पर ये जरूरी है, लेकिन ट्रू प्योरिटी कहां होती है? सोल के मूवमेंट में होती है, क्योंकि वो डिवाइनली इंस्पायर्ड है. ए मीडिएटिंग रे हैड टच द अर्थ, ब्रिजिंग द गल्फ बिटवीन मैन्स माइंड एंड गॉड्स. जब माँ से किसी ने पूछा साइकिक बीइंग के बारे में, तो बहुत कुछ बताया उन्होंने. एक जगह उन्होंने इमेज दी है, द बॉडी इज लाइक द लैम्प एंड द डिवाइन इज लाइक द जनरेटर, द साइकिक इज द वायर दैट कनेक्ट्स द जनरेटर टू द लैम्प. अब देखिए हो गया ना, लैम्प इज लिट, मीडिएटिंग रे, मैंस माइंड एंड गॉड्स, सो दैट इज द साइकिक बीइंग. Its brightness linked our transience to the unknown. A spirit of its celestial source aware, translating heaven into a human shape. वो जो सौंदर्य है, वो जो शक्ति है, वो जो माधुर्य है, वो जो प्रेम है और प्रकाश है भगवान का, उसको एक रूप देने की प्रक्रिया, ट्रांसलेटिंग हेवन इंटू ए ह्यूमन शेप, प्रयास की फॉर्म शुड बी लाइक द सोल विद इन, डिसेंडेड इंटू अर्थ्स इम्परफेक्ट मोल्ड, लेकिन ये मिट्टी तैयार नहीं है, एंड वेप नॉट फॉल इंटू मॉर्टेलिटी. मिट्टी तैयार नहीं है, क्यों? बड़ी कठोर है ये, तो भगवान को हथौड़े से पीटना पड़ता है, या बहुत नरम है, स्लाइम जैसी है, करेक्ट कंसिस्टेंसी नहीं है, या तो बड़ी कठोर होती है, या वो इतनी नरम होती है कि वो टिक नहीं पाती. कहते हैं ना, आटा गूंथते हैं तो सही मात्रा में पानी और आटे का मिश्रण होना चाहिए, ये बताया जा रहा है. ज़्यादा पानी होगा तो लोग फिर और आटा डालते हैं, फिर आटा ज़्यादा हो जाता है तो पानी और डालते हैं. सही प्रोपोर्शन में मैटर और स्पिरिट का जो समन्वय है तभी होता है. तो यहाँ पर अर्थ इम्परफेक्ट मोल्ड एंड वेप नॉट फॉल इन टू मॉर्टेलिटी. चैत्य कभी ये नहीं सोचता है. ये जो लोगों ने कहा ना कि हम हंसे जग रोया, ये सब चैत्य ऐसे कभी नहीं. ये चैत्य का भाव क्या होता है? आ चलो फिर से एक बार प्रयास करेंगे. प्रणब दास से किसी ने पूछा था ना कि इस बार सक्सेस अगर नहीं हुई तो, कहते आई कम बैक अगेन. द्युमन भाई से किसी ने पूछा था, कहते आई विल कम बैक, आई वॉन्ट टू कम बैक क्विकली एंड डू द वर्क. उनको पता है कि ये काम होना ही है, उसमें क्या है? मृत्यु तो एक पड़ाव, एक पैसेज है, कुछ देर का विश्राम है. लेकिन जो ईगो होती है उसके लिए ये डिस्ट्रक्शन है, क्योंकि जो कुछ भी ईगो से जनरेटेड है, सेंसेस, माइंड, फीलिंग्स, वो खत्म हो जाएंगे. पर सोल के लिए वाई शुड इट क्राई? उसको तो एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिल रही है. सोल के लिए तो वो ऐसा हो गया कि जिंदगी आई दोबारा तिबारा जितने बार. तो सोल के लिए तो ये मिस्टिक अटेम्प्ट है. बट लुक्ड ऑन ऑल विद लार्ज एंड ट्रैंक्विलाइज, वन हैड रिटर्न फ्रॉम द ट्रांसेंडेंट प्लेन्स एंड बोर एंड न्यू द लोड ऑफ मॉर्टल ब्रेथ. श्वास लेना ही मर्त लोक में, माँ कहती हैं, यू ब्रीथ पॉइजन बिकॉज वर्ल्ड इज फुल ऑफ पॉइजन. उन चीजों की भी बात नहीं कही जा रही है जो पॉइजन के गढ़ हैं, पार्टी, जुआ, शराब, इसकी तो बात ही छोड़ दीजिए. वो तो मतलब वो तो पॉइजन वो वाला है, कालकूट है, पूरा विष है. पर इवन जीवन जैसा लोगों के अंदर इतनी इल विल, ना जाने कितनी दिखावा बाहर कुछ अंदर कुछ, इतना विष भरा हुआ, ईर्ष्या, कैसी कैसी वृत्तियां. माँ कहती यू कैन नॉट ब्रीद विदाउट टेकिंग पॉइजन, क्योंकि एक इंटरचेंज होता है ना प्राण की वायु के साथ में. तो लोड ऑफ मॉर्टल ब्रेथ, हु हैड स्ट्रिवन ऑफ ओल्ड विद अवर डार्कनेस एंड अवर पेन, शी टुक अगेन हर डिवाइन अनफिनिश्ड टास्क. अब ये हम लोगों के लिए उदाहरण है. ये जो लोग होते हैं, अब क्या है, अब हम बूढ़े हो गए, अब हमारा टिकट कब कट जाए, कौन जाने बाद में क्या हो, ये सब अज्ञान की भाषा ईगो कहती है. साइकिक कभी ऐसा नहीं कहता है, क्योंकि वो जानता है कि वो तो चिर युवा हो रहा है. इसीलिए साइकिक में जो जीते हैं उनको मृत्यु का डर नहीं होता. माँ कहती है, वन ऑफ द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस इज दैट देर इज नो फियर ऑफ डेथ बिकॉज यू आर कॉन्शियस ऑफ इमॉर्टैलिटी. ये कॉन्शियसनेस एक सर्टिट्यूड के साथ आती है. आपको पता है कि मृत्यु कुछ नहीं है, थोड़ी देर को यूं गया और यूं आया, जैसे एक मिस्टिक ने बताया था ना कि ध्यान कैसे करते कहते हैं अथे चुक अथे रख, पिक अप फ्रॉम हियर एंड पुट इट देयर, जो ध्यान इधर उधर बटा हुआ है उसको उठाओ और भगवान में लगाओ। तो उसी तरह यूं गया यूं आया, क्योंकि उसको पता है दिस इज अ प्रोसेस, व्हाई शुड इट क्राई, एंड वन कम्स बेटर एंड बेटर। शी टुक अगेन हर डिवाइन अनफिनिश्ड टास्क, देखो वही हम लोग आज पढ़ रहे थे रिन्यूअल में, वे कर्म जो अधूरे रह गए। अब वो कर्म ये नहीं कि हमारे बच्चे की शादी नहीं हुई थी, अगले जन्म में करा देना भगवान हम देख लें, मेरे पोता नहीं हुआ था, कैसी कैसी लोगों की एम्बिशन होती पूछते मुझसे कि आपका कोई ग्रैंड चाइल्ड हुआ, तो मैं कहता हूँ नहीं, मेरे बच्चों ने तो मेरे बच्चे ने बेटे ने डिसाइड किया है कि वो कोई बच्चा नहीं करेंगे। अच्छा, मैंने कहा अरे थैंक गॉड, अभी तो हम बड़ी मुश्किल से निकले हैं, अब उसका भी बच्चा हो जाए तो हम तो बुरी तरह उलझ जाएंगे, एक तो भगवान भला हो उसका कि उसके विचार सीरियसली। और फिर मैं उसको थोड़ा मिस्टिक ट्विस्ट दे देता हूँ कि भाई देखिए, आपने कोई अधूरा काम रह गया है तो संतानें पूरा करती हैं, हमारा तो कोई कर्जा नहीं है किसी पर तो हमको तो कोई ग्रैंड चाइल्ड और ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड नहीं चाहिए, डन द जॉब, रख दीजिए चदरिया, जब नहीं है कोई तो आप अपना काम करोगे ना, ये अधूरा कर्जा वो बेचारे क्यों क्यों उतारेंगे। तो ये हाँ, या यू कैन से दैट, शुड दिस बी कंसिडर्ड एज, इट इज अ ओल्ड कॉन्शियसनेस विच इज वी लिव्ड इन द ईगो, जो हमारी पुरानी चेतना है वो ईगो का ही राज्य, तो उसको ये लगता है कि हम वो बच्चे होंगे तो बच्चे ये करेंगे जो हम नहीं कर पाए। पेरेंट्स बच्चों में अपने अनफुलफिल्ड एम्बिशन डालते हैं, ये दैत्य कुल के पेरेंट्स होते हैं, और जो देव कुल के पेरेंट्स होते हैं वो ये नहीं करते हैं। देव कुल के पेरेंट्स अपने बच्चों में गुण का वर्धन करने का, विकास करने का प्रयास करते हैं, ये दोनों में डिफरेंस है। रावण की मम्मी चाहती थी कि रावण दैत्य राज बने, जो उसके हस्बैंड करते करते नहीं कर पाए बेचारे अपने जीवन में। और राम की माँ तो ये चाहती थी कि बस तू बड़ा होके यश हो तेरा, गुण हो तेरे अंदर, तो यही डिफरेंस है। तो यहां पर जो जिस अटेम्प्ट की बात यहां पर हो रही है, अनफिनिश्ड टास्क, अनफिनिश्ड टास्क क्या है, सर्वाइवर ऑफ डेथ एंड द एओनिक इयर्स, वंस मोर विद हर फैदमलेस हार्ट शी फ्रंटेड टाइम। अब माता जी का उदाहरण है, फैदमलेस हार्ट शी फ्रंटेड टाइम, अगेन देर वॉज रिन्यूड, अगेन रिवील्ड द एंशंट क्लोजनेस बाई अर्थ विजन वेल्ड, द सीक्रेट कॉन्टैक्ट ब्रोकन ऑफ इन टाइम। अब चौथी लाइन जो है वो मास्टर पंच है, तो उसके पहले फिर से स्मरण आया, अगेन वी गो बैक टू द सेम, कृतो स्मर कृतम स्मर, कोई काम था जो अधूरा रह गया था पूरा करना है, एंड इट हैड नथिंग टू डू थैंकफुली विद अवर बैंक बैलेंस। कोई काम था जो अधूरा रह गया था, वो कौन सा काम है, अब ये चौथी लाइन में, पहले तीन लाइन फिर पढ़ते हैं, दिस कॉल्ड स्पिरिचुअल सस्पेंस। अगेन देर वॉज रिन्यूड, अगेन रिवील्ड द एंशंट क्लोजनेस बाई अर्थ विजन वेल्ड, अब किसकी क्लोजनेस की बात कर रहे हैं, द सीक्रेट कॉन्टैक्ट ब्रोकन ऑफ इन टाइम, ए कॉन्सैंग्विनिटी ऑफ अर्थ एंड हेवन, ये कॉन्टैक्ट है सीक्रेटली, दे आर नेवर पार्टेड। पार्ट कौन लोग करते हैं, जो कहते हैं भगवान वहां पर है, तो जब भगवान ऊपर है तो लोग यूं प्रे करते हैं, हम कहते हैं भगवान यहां है तो हम यूं प्रे करते हैं क्योंकि हमारे तो अंदर है। देखिए जेस्चर में आप क्या आता है, अगर भगवान दाउ आर्ट इन हेवन तो आप ऐसे हाथ उठाओगे, है ना, आर फादर दाउ आर्ट इन हेवन, हम कहते हैं हम ब्रह्मास्मि, तो अपने ही अंदर हम प्रणाम कर लेते हैं, तत्त्वमसि तो दूसरे को भी प्रणाम कर लेते हैं, भाई हमारे ही अंदर नहीं है तुम्हारे अंदर भी है, हम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, ये दो में हमारा हो जाता है काम लेकिन अगर भगवान ऊपर है तो हम ऊपर भाई भेजते हैं, पहुंचेगी कब, कबूल होगी, कबूल होके आएगा, जो भी होगा। तो यहां पर वो है कि ये पार्टिंग है नहीं, ये अर्थ विजन में ये नहीं पकड़ में आता है, मेटीरियल विजन इसको नहीं समझ पाता है, और वो कॉन्टैक्ट है, लेकिन टाइम में ऐसा लगता है कि वो ब्रोकन है. ऑलवेज द एंटायर फ्लो ऑफ टाइम इज वन. द एंशिएंट अगेन देयर वाज रिन्यूड, अगेन रिवील्ड द सीक्रेट कॉन्टैक्ट ब्रोकन ऑफ इन टाइम. कौन सा कॉन्टैक्ट? जो यही प्रयास चल रहा था हर लाइफ में, लेकिन हम भटक जाते हैं. कौन भटकाता है? सबसे पहले हमारे माता पिता. तुझे ये बनना है, देख तेरे पापा तो नहीं बना पाए घर, तू बनाएगा. फिर कौन भटकाता है? शिक्षक. 99.9% आने हैं. फिर कौन भटकाता है? समाज. आप कहें कि भाई हमें, हमने आत्मा पा ली, लोग कहेंगे इससे क्या हमारा, दे यू विल बी नॉट वैल्यूड एट ऑल. पर आप कहेंगे हमने बहुत बड़ी एक MD की डिग्री ली है या DM, तो अच्छा हाँ आइए आपका आदर होगा. अब देखिए भारतवर्ष में तो ये था कि जो जिसने अपनी सोल को पाया है वो श्रेष्ठ माना जाता था, ये भारतवर्ष में था. लेकिन वेस्टर्न कंटेक्स्ट में ये नहीं है. अगर आप जाके इसकी बात करें तो लोग कहेंगे पागल है, दे विल गिव यू प्लेस बिकॉज लेफ्ट लिबरल थॉट में, चलो इसको एक कोने में रहने दो, इतना है. नहीं, यही है ना, दे हैव शट गॉड फ्रॉम हर चीज से निकाल दिया है. पर भारतवर्ष में सम्माननीय होता था कि नहीं, अगर आपने ये तो सबसे बड़ा काम आपने कर दिया, आपने कोई डिग्री प्राप्त की हो नहीं की हो, लेकिन यू हैव फाउंड योर सोल. माई गॉड, दिस इज सो. ये जो सीक्रेट कॉन्टैक्ट है ब्रोकन ऑफ इन टाइम, क्यों हम कहीं भटक गए, थ्रेड स्नैप हो गया, मोह माया ये सारे उसमें हम उलझ गए. अब वो कहता है हो गया, काट डाला वो सब, अब फिर से शुरू कर. द सीक्रेट कॉन्टैक्ट ब्रोकन ऑफ इन टाइम, ए कॉन्सैंग्विनिटी ऑफ अर्थ एंड हेवन. कॉन्सैंग्विनिटी मतलब दोनों कजिन्स ही हैं, उनके बीच मैरिज हो रही है. कॉन्सैंग्विनस मैरिज, भाई बहन है लेकिन उनको साथ लाया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है. कितना सुंदर वर्ड है. भाई बहन तो जुड़े होते हैं हमेशा, पर बिछड़ जाते हैं. पुरानी पिक्चरें होती थी ना वैसे मेले में, तो वैसे ही संसार के मेले झमेले में स्वर्ग और पृथ्वी बिछड़ गए. अब देखिए जो व्यक्ति पृथ्वी पर है वो स्वर्ग ढूंढ रहा है, तो उसको जितने वो ब्रांडेड शोरूम में कहते हैं आ जाओ यहाँ स्वर्ग है, अमेरिकन से बुलाते हैं यहाँ स्वर्ग है, और हम सब वहां जाके नरक बना देते हैं. भाई आदमी शुद्ध नहीं, जहां जाएगा है ना, ब्रांडेड शोरूम स्वर्ग इधर है, तो अब भटक गए. लेकिन वो भाई तो तुम्हारे वहीं, वहां खोजो ना जहां खोया था तुमने. मम्मी के पास जाओ ना, वहां है भाई भैया. तो ये करके ये जो कॉन्सैंग्विनिटी, देखो एक वर्ड कितना सुंदर है. यहां मैरिज की बात नहीं कर रहे, नॉर्मली मैरिज की बात होती है इन इन टिपिकल रिलीजियस सिंबल. वैदिक ऋषि भी मैरिज की बात करते हैं, हेवन एंड अर्थ. शिव ने क्या वर्ड यूज किया, कॉन्सैंग्विनिटी, मतलब किसकी मैरिज कर रहे हो, तो हमेशा साथ थे, ऐसा लगा कि अलग हो गए, एक ही फ्लेम से जन्मे थे, अब दोनों को साथ लाया जाए, तो भाई बहन भी है. एट द सेम टाइम वो मैरिड हो गए. अब अंतिम तीन चार लाइन, बिटवीन द ह्यूमन पोर्शन टॉयलिंग हियर एंड एन एज येट अनबॉर्न एंड लिमिटलेस फोर्स. एक वो शक्ति जो इस संसार में प्रकट होना चाहती है, प्रकट मतलब क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि हमारे फॉर्म्स रेडी नहीं है, तो वो रेडी कर रही है, इसीलिए समय लगता है. पूरी जो समस्या यही है, मैटर की इम्परफेक्शन है, वो प्रकटन के लिए ऐसे फॉर्म्स ढूंढ रही है, क्रिएट कर रही है. तो द डेयरिंग, क्या लाइन्स हैं ये, अगेन द मिस्टिक डीप अटेम्प्ट बिगैन. द डेयरिंग वेजर ऑफ द कॉस्मिक गेम. वेजर, वेज से आता है ये शब्द, तनखा. हमारी क्या वेजेस हैं, ये वेज, ये कोई वेज होती है? डेयरिंग वेजर, वो जो तुम डेयर करते हो इम्पॉसिबल को, तब जो मिलता है वो क्या मिलता है? स्वर्ग और पृथ्वी का मिलन, द डेयरिंग वेजर. इसीलिए अभी भी एक्सट्रीम गेम्स जो होते हैं वो अल्टीमेट अट्रैक्शन, लोग कर नहीं पाते हैं तो वो देखते हैं, बंजी जंपिंग देख के उनको थोड़ा मजा आता है, क्योंकि वो डेयरिंग वेजर है. तो डेयरिंग वेजर ऑफ द कॉस्मिक गेम, अगेन द मिस्टिक डीप अटेम्प्ट बिगैन, द डेयरिंग वेजर ऑफ द कॉस्मिक गेम. नमस्ते.